अध्याय 6। स्वामी विवेकानंद गुरुजी से मिलने पहुंचे। 1967 की गर्मियों में एक महान घटना घटी। गुरुजी का संपर्क महान स्वामी विवेकानंद से हुआ। जैसा कि गुरुजी ने हमें बताया, वह अपने पिछले जीवन में स्वामी जी के प्रत्यक्ष शिष्य थे और यहाँ तक कि वह श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें वो प्यार से ठाकुर कहते थे, के साथ भी रहे थे। जब भी वह ठाकुर के बारे में बात करते थे तो बहुत भावुक हो जाते थे और कई बार तो वह समाधि में भी पहुंच जाते थे। जब वह अपने मुंह बोले पिता के निवास पर अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिता रहे थे तो स्वामी विवेकानंद लगभग रोज अपने सूक्ष्म शरीर में उनसे मिलने आते थे और उन्हें दूसरी दुनिया के बारे में बहुत ज्ञान की बातें सिखाते थे। जब भी स्वामी जी आते तो ज्ञान को अपनी बाई बांह में बहुत तेज कंपन महसूस होता। यह इस बात का संकेत होता कि वह आ चुके हैं। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उन्होंने ज्ञान को बताया था। यह बिल्कुल वैसा ही विवरण था जैसा कि स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने स्वामी योगानंद परमहंस को योगी की आत्मकथा में बताया था। उस समय ज्ञान स्वामी ने वह किताब नहीं पढ़ी थी। स्वामी जी ने ज्ञान को कई गुप्त योग की तकनीकें भी सिखाई। यह संपर्क लगभग 3 वर्षों तक चलता रहा। गुरु पूर्णिमा की रात को एक मज़ेदार घटना घटी। स्वामी जी ज्ञान के पास आए हुए थे और उन्हें बता रहे थे कि अचानक बारिश होने लगी और चूंकि ज्ञान घर की छत पर उनसे मिलते थे, बारिश के कारण उन्हें नीचे जाना पड़ रहा था। स्वामी जी ने भी कहा कि वह वापस चलते हैं क्योंकि उनके सूक्ष्म जगत में आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। ज्ञान को बहुत आश्चर्य हुआ कि गुरु पूर्णिमा सूक्ष्म जगत में भी मनाई जाती थी। फिर ज्ञान ने उनसे पूछा कि आप कैसे जाएंगे, क्योंकि बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। स्वामी जी जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि उन पर बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। यह सुनकर ज्ञान को भी अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। एक अन्य समय जब स्वामी जी ज्ञान से मिलने आए थे तो उनकी चाची ने उनकी पसंदीदा मटन करी बनाई थी और वह रसोई से उन्हें बार बार खाना खाने के लिए बुला रही थी। तब ज्ञान ने स्वामी जी से कहा कि वह भोजन खाकर आते हैं, तब तक आप प्रतीक्षा करें। स्वामी जी हंसकर बोले, ठीक है। उन्होंने ज्ञान के लौटने तक का इंतज़ार किया। एक बार जब ज्ञान को किसी काम से कोलकाता जाना पड़ा तो स्वामी जी ने उन्हें बेलूर मठ के अध्यक्ष श्री विरेक्षानंद जी से जाकर मिलने के लिए कहा। ज्ञान ने स्वामी जी से पूछा, वह बहुत प्रसिद्ध और व्यस्त व्यक्ति हैं, वह मुझसे क्यों मिलेंगे? स्वामी जी ने उनसे कहा कि वह उन्हें बता देंगे। जब ज्ञान ने बेलूर मठ का दौरा किया तो वहाँ के अध्यक्ष से मिलने के लिए आग्रह किया तो वहाँ के भिक्षुओं को बहुत आश्चर्य हुआ। विरेक्षानंद जी उनका स्वागत करने के लिए स्वयं बाहर आए और उन्हें गले से लगा लिया। दोनों की आंखें खुशी से नम थी। अध्याय 7। महावतार बाबा जी पुण्य गुरु जी से मिलने आए। एक दिन ज्ञान स्वामी कॉलेज की कक्षाओं से लौटकर अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे। उनके रूममेट और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले प्रिय मित्र, प्यार से जिन्हें डॉक्टर भाई कहा जाता था, भी उनके साथ थे। किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया और ज्ञान को बताया कि एक युवा साधु उन्हें ढूंढ रहे हैं। ज्ञान बाहर गए और देखा यह वही युवा साधु थे जिन्होंने उनके हृदय रोग का इलाज किया था। अचानक उन्हें देखकर ज्ञान बहुत आश्चर्यचकित हुए और चौंके भी और उन्हें अंदर बुलाया। वे सोच रहे थे इस साधु को कैसे पता चल सकता है कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ और कहाँ रहता हूँ, जबकि मैंने कभी भी उनके साथ अपने बारे में कुछ भी साझा नहीं किया था। जबकि ज्ञान अभी भी इस साधु की अचानक उपस्थिति के बारे में सोच रहे थे, इस बीच युवा साधु ने अपने दोस्त से जाकर फूल लाने के लिए कहा। जैसे ही ज्ञान और साधु ने खुद को अकेला पाया, शांति की भावना ने ज्ञान की प्रारंभिक घबराहट को समाप्त कर दिया। उनकी उपस्थिति ज्ञान के मन में रहे किसी भी संदेह या अविश्वास को दूर करती हुई प्रतीत हुई। साधु ने कोमल स्पर्श से ज्ञान का हाथ पकड़ लिया। फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ हूँ, धीरे से बोले गए उनके शब्दों में गहराई थी जो ज्ञान की आत्मा में गूंजती थी। साधु ने उन्हें भविष्य के लिए अनेक निर्देश दिए। इसी बीच डॉक्टर भाई फूल लेकर वापस आए और साधु ने दोनों को आशीर्वाद दिया। जितनी तेजी से वह आए थे उतनी ही तेजी से वह कमरे से चले गए। जब ज्ञान प्रस्थान कर रहे व्यक्ति के पीछे चल रहे थे तो उनके कदमों की आहट तीव्रता से गूंज रही थी। उनका हृदय साधु से और अधिक वार्तालाप के लिए उत्सुक था। साधु इमारत से बाहर गए, एक गली की ओर मुड़े और गायब हो गए। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। कोई आदमी हवा में कैसे गायब हो सकता है? ज्ञान ने उन्हें हर जगह तलाशा लेकिन वह नहीं मिले। वो सड़क अब आश्चर्य की रहस्यमय भावना से रंगी हुई थी। ज्ञान ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उनका मन और हृदय भावनाओं के बवंडर में घूम रहा था। आश्चर्य, भ्रम और एक साधु की उपस्थिति ने उन्हें गहरे तक छू दिया था। उस मुठभेड़ की स्मृति रहस्य और मार्गदर्शन की एक किरण बनकर रह गई जिसे ज्ञान अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए हर दिन अपने अंदर रखते थे। और इनके विचारों में यह सवाल बना रहा, कोई आदमी हवा में कैसे गायब हो सकता है? उत्तर शायद असाधारण के कालातीत दायरे में निहित है, जहां वास्तविकता और धारणा के धागे एक नृत्य में आपस में जुड़ते हैं जो ज्ञात की सीमाओं को तोड़ देता है। इस घटना ने उन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि इंजीनियरिंग की अपनी अंतिम परीक्षा देने के दिन वह मायावी साधु को खोजने के लिए एक अटूट खोज से प्रेरित होकर तुरंत हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। इस प्रयास में उन्होंने अपने परिवार को सूचित करने, संभावित परिणामों की उपेक्षा करने या भविष्य के कैरियर की संभावनाओं पर विचार करने का भी फैसला नहीं किया, जबकि उनके साथी आकर्षक नौकरी के अवसरों की तलाश में व्यस्त थे। वह आध्यात्मिक अन्वेषण के अपने अनूठे पथ पर दृढ़ रहे। बाद में हिमालय में उन्हें एहसास हुआ कि वह युवा साधु कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी थे और क्रिया योग में दीक्षित हो गए। इसके बाद वह बाबा जी और अन्य संतों के साथ हिमालय में 2.5 साल तक रहे और कई योग तकनीकें और अभ्यास सीखे। वह कुछ समय के लिए बाबा जी की टोली, उनके साथ चलने वाले शिष्यों का एक छोटा समूह में थे। वह हमेशा उनके साथ रहना चाहते थे लेकिन उन्हें दुनिया में वापस लौटने, गृहस्थ की तरह रहने और क्रिया योग सिखाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बाबा जी से पूछा कि उनसे सीखने कौन आएगा। बाबा जी ने उनसे कहा कि साधकों को भेजना उनका काम है। बाबा जी से दोबारा पूछताछ करते हुए उन्होंने सवाल किया कि अगर वे वापस लौटेंगे तो उन्हें रोजगार कौन देगा। अपने इंजीनियरिंग परिणामों के बारे में अभी तक उसे कोई जानकारी नहीं है और कोई कार्य अनुभव भी नहीं है, तो उन्हें काम कैसे मिलेगा। बाबा जी ने शांत आश्वासन दिया कि सब कुछ प्रबंधित हो जाएगा। अध्याय 8। गुरुजी दुनिया में वापस लौटे। हिमालय से लौटने के बाद गुरुजी को लगभग जादुई तरीके से एक स्विस फर्म में नौकरी मिल गई और उन्होंने कुछ वर्षों तक काठमांडू नेपाल में काम किया। फिर उन्हें जमशेदपुर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई और वे बिहार लौट आए। बाबा जी के आशीर्वाद से जमशेदपुर में उनके मकान मालिक श्री वर्मा और उनकी पत्नी उन्हें अपने बेटे की तरह मानने लगे। कई बार श्री वर्मा और गुरुजी एक साथ ध्यान करते थे। एक दिन दोनों कुछ आध्यात्मिक विषयों, आत्मा की अमरता के बारे में चर्चा कर रहे थे। अचानक ज्ञान स्वामी ने कहा, पप्पा जी, मान लीजिए कि मैं पहले मर जाऊंगा तो मैं सूक्ष्म शरीर में आपके पास आऊंगा, और यदि आप पहले मरेंगे तो आप मेरे पास आकर बताएंगे कि भौतिक शरीर छोड़ने के बाद भी आप जीवित हैं। सेवानिवृत्त के बाद श्री वर्मा जमशेदपुर से रांची चले आए। एक रात के दौरान गुरुजी ने श्री वर्मा को 3 बार जोर जोर से पुकारते हुए सुना। वह अपने बिस्तर से उठकर यह देखने लगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब उन्हें एहसास हुआ, ओह, ऐसा लगता है कि पप्पा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है और वह अपनी बात रखने के लिए मेरे पास आए हैं। सुबह उनकी मृत्यु की खबर आई। उनका पिछली रात निधन हो गया था। गुरुजी कर्मठ सन्यासी थे। उन्होंने अपनी आजीविका स्वयं अर्जित की। उनका मानना था कि एक सन्यासी को समाज पर बोझ नहीं बनना चाहिए। उन्हें कई संतों ने व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद दिया था। श्री सत्य साई बाबा, आनंदमोई माँ, श्री जय कृष्णमूर्ति, ओशो, श्री देवराह बाबा आदि। अध्याय 9। गुरुजी और लाल बाबा। गुरुजी के शब्दों में, लाल बाबा का जन्म वर्ष 1715 में भारत के गोरखपुर यूपी के पास एक बहुत अमीर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे जन्मजात योगी थे। वह अधिक समय तक परिवार में नहीं रह सके और साधु बन गए और असम राज्य के कामरूप कामाख्या मंदिर में आ गए। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर तांत्रिक साधना के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वे वहाँ 14 वर्ष तक रहे और तंत्र योग की कठोर साधना की। फिर उन्होंने कामरूप छोड़ दिया और हिमालय की घाटियों में आ गए, जहाँ अगले 14 वर्षों तक उन्होंने एक झील के पास विभिन्न गुरुओं के साथ राजयोग का अभ्यास किया और केवल जल कुंभी साग पर जीवित रहे। एक पत्तेदार पौधा जो ज़्यादातर उत्तर भारत और थाईलैंड के पानी में पाया जाता है, जहाँ वे कहते हैं कि यह सुबह की महिमा है। फिर अगले 14 वर्षों तक उन्होंने उन्नत गुरुओं के साथ कई प्रकार की योग तकनीकों का अभ्यास किया और केवल नोनी साग पर जीवित रहे, जो उत्तर भारत में पाई जाने वाली एक पत्तेदार सब्जी है और ज़्यादातर गरीब लोगों द्वारा खाई जाती है। योग में उच्च स्थिति प्राप्त करने के बाद वे भारत के कोने कोने में घूमने लगे। 1857 के दौरान जब पहला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, तब वह एक वयस्क सन्यासी थे। उन्होंने पुणे में बाजीराव पेशवा, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई और बिहार के जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह से मुलाकात की और सभी को प्रोत्साहित किया। समय बीतता गया और बाबा चलते फिरते रहे। उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया था जहां वे कुछ समय रुक सकें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू और अन्य कई लोगों को आशीर्वाद दिया। जब पंडित मोतीलाल नेहरू को कोई समस्या नहीं हो रही थी तो वे श्री मालवीय जी के साथ बाबा जी के पास आशीर्वाद लेने आए। बाबा उन्हें हिमालय में अपने गुरु के पास ले गए। 9 महीने के बाद पंडित मोतीलाल को एक पुत्र का आशीर्वाद मिला जिसका नाम बाद में जवाहर रखा गया और वह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, प्रसिद्ध पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब मैं वर्ष 1977 में MS टाटा मोटर्स जमशेदपुर से जुड़ा तो स्वाभाविक रूप से कई आध्यात्मिक व्यक्ति मेरे पास आने लगे। उनमें से एक श्री RP सिन्हा, श्री राम पदार्थ सिन्हा थे जो लाल बाबा के शिष्य थे। उन्होंने मुझे बाबा के बारे में बहुत सी बातें बताई। श्री RP सिन्हा अपने पिछले जन्म में भी बाबा के शिष्य थे। बाबा उसी शरीर में रहते थे। एक अन्य श्री हरिंदर सिंह थे जिनके लाल बाबा पिछली 5 पीढ़ियों से पारिवारिक गुरु थे। लाल बाबा ने श्री RP सिन्हा से कहा था, जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम किसी शिव मंदिर में जाओ और शिव को अपनी इच्छाओं के बारे में बताओ, वह मुझे तुरंत बता देगा और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लाल बाबा 8 साल तक जमशेदपुर नहीं आए। कई लोगों ने सोचा कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया होगा। यह श्रावण जुलाई अगस्त का महीना था जब लोग शिव मंदिरों में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। श्री RP सिन्हा अपनी प्रार्थना करने के लिए प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम देवघर, जो अब झारखंड राज्य में हैं, गए। बिहार के सुल्तानगंज में लोगों को अपने बर्तनों में गंगा जी का पानी भरना पड़ता है और फिर वे इस पवित्र जल को भगवान को अर्पित करने के लिए लगभग 82 मील की दूरी तय करते हैं। वहां उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वह अपने गुरु लाल बाबा से मिलना चाहते हैं और जब वह ट्रेन से जमशेदपुर लौटे तो अपने गुरु श्री लाल बाबा को अपने घर के गेट पर खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लाल बाबा ने उनसे कहा, देखो मैं मोतिहारी जमशेदपुर से लगभग 750 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा के पास एक शहर से गुजर रहा था और भगवान शिव ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो, इसलिए मैं भागा हुआ आया। अगले दिन मुझे बाबा के आगमन की सूचना मिली और मैं उनसे मिलने गया। मुझे देखकर बाबा खड़े हो गए और बोले, आओ आओ, तुम यहाँ हो, यह अच्छा है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे। उनके सामने ड्राइंग रूम में करीब 30 लोग बैठे थे। उसने सभी को कुछ समय के लिए बाहर जाने के लिए कहा और उसने मुझे केवल अपने साथ रहने के लिए कहा। फिर उसने मुझे दरवाजे और खिड़कियां बंद करने को कहा। मैं जानता था कि उसने मुझे पहचान लिया है। वह मेरे पास आए और अचानक अपने शरीर को बहुत उच्च स्तर के आध्यात्मिक कंपन के साथ प्रकाश से भरे एक ब्रह्मांडीय शरीर में बदल लिया। उन्होंने मुझ में कई दिव्य शक्तियों का संचार करना शुरू कर दिया और अंत में मुझसे कहा, लोग मेरे पास केवल सांसारिक इच्छाओं के लिए आते हैं, लेकिन आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो मुझे समझ सकते हैं। इसलिए मैं अपने पास मौजूद हर चीज को दिव्य दे रहा हूँ, लेकिन सावधान रहना, इस शक्ति से किसी को नुकसान मत पहुँचाओ, केवल मानव जाति की मदद करो, मेरे धन्य बच्चे। मैं जब भी जमशेदपुर आऊँगा तो दिन में कम से कम एक बार आपसे ज़रूर मिलूँगा। तब से मैं इस दुनिया का उनका सबसे करीबी इंसान बन गया। हम जब भी मिलते थे तो उच्च आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। दिसंबर 1997 में वे जमशेदपुर आए थे। मैंने उनकी आभा देखी और माता जी से कहा कि लाल बाबा जल्द ही इस दुनिया को छोड़ देंगे, उनके जाने का समय आ गया है। और कुछ ही दिनों में उन्होंने जमशेदपुर से वाराणसी जाते समय अपना शरीर त्याग दिया। हालांकि अब वह अपने भौतिक शरीर में नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से वह लगातार मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं उनकी दी हुई दिव्य शक्ति का उपयोग भक्तों के कल्याण के लिए करता हूँ। अध्याय 10, कुछ दिव्य दृष्टि और सपने। गुरुजी और मैं एक ऊंचे पेड़ से लटके हुए हैं। अपने बाएं हाथ से उसने पेड़ को पकड़ रखा है और दाहिने हाथ से उसने मुझे पकड़ रखा है। मैं नीचे शहर देख सकती हूँ। गुरुजी कहते हैं, यदि तुम चाहो तो पेड़ से नीचे चढ़कर जा सकती हो, यह पूरी तरह तुम पर निर्भर है। अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो मैं बहुत जल्द पेड़ को छोड़ दूंगा और क्षण भर के लिए मैं अपने परिवार और विशेष रूप से नक्षत्र के बारे में सोचने लगी। लेकिन अगले ही पल मैंने गुरुजी के साथ रहने का फैसला किया। मैं आपके साथ रहूंगी, मैं कहती हूँ। वे मीठी सी मुस्कान मुस्कुराते हैं और पेड़ से अपना हाथ छोड़ देते हैं। हम दोनों हवा में हैं। अगले ही पल मैं अपने सूक्ष्म शरीर में हूँ और घर की ओर उड़ रही हूँ। मैं दीवारों और दरवाज़ों से गुज़रती हूँ और अपने कमरे में मुझे निवेद और नक्षत्र दिखाई देते हैं। मैं नक्षत्र को गले लगाती हूँ, लेकिन वह मुझे महसूस नहीं कर पाता। मैं उनके बगल वाले बिस्तर पर बैठती हूँ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं वहाँ हूँ। लेकिन वे खुश हैं और मुझे पता है कि उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है। मैं निश्चिंत होकर वहाँ से चली जाती हूँ। मैं सोकर उठ जाती हूँ। कितना ज्वलंत स्वप्न था। मैंने इसे साझा करने के लिए गुरुजी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि यह एक प्रकार का दर्शन है और यह मेरे समर्पण की बात करता है, जो मेरी आध्यात्मिक प्रगति का एक बहुत अच्छा संकेत है। मैं एक बड़े मंदिर पर चढ़ती हूँ और मुझे मंदिर के बरामदे पर लेटे हुए शिवजी दिखाई देते हैं। वे इतने विशाल हैं कि मेरी आंखें ही उन्हें पूरा नहीं पकड़ पाती। तेज सिरदर्द शुरू हो जाता है और मैं वहाँ की ऊर्जा सहन करने में असमर्थ हो जाती हूँ। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देती हूँ और मैं देखती हूँ कि गुरुजी ऊपर आ रहे हैं। वे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं वहाँ की ऊर्जा सहन नहीं कर सकती, मुझे सिरदर्द हो रहा है और मैं जा रही हूँ। मैं उनसे कहती हूँ, मेरे साथ आओ। वे बोलते हैं और मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हैं। एकदम से मेरी सारी परेशानी गायब हो जाती है। स्वप्न टूटा और मैं उठी। जब मैंने गुरुजी को यह स्वप्न सुनाया तो वे मुस्कुराए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सभी रास्तों पर उनको साथ लेकर ही चलूं। तीसरा, मैं कहीं सड़क पर हूँ और मुझे बड़ी प्यास लग रही है। मुझे सड़क के बाईं ओर एक तंबू दिखता है और मैं जाकर पानी मांगने का निर्णय लेती हूँ। अंदर एक संत व्यक्ति हैं और वे मेरा स्वागत करते हैं। यह जानकर कि मुझे प्यास लगी है, वे तंबू के अंदर जाते हैं और मेरे लिए ताज़ा नींबू पानी लाते हैं। मैं उसे पीकर बहुत बेहतर महसूस करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ। फिर मैं उनसे उसका नाम पूछती हूँ। बस वह मुस्कुराते हैं और मुझे प्यार से आशीर्वाद देते हैं। वर्षों बाद जब मैं सत्य साईं बाबा के दर्शन के लिए हड़सी गई, तो मैंने 3 साईं रूपों की तस्वीरें देखी। शिरडी साईं बाबा, सत्य साईं बाबा और प्रेम साईं, जो अभी आने वाले हैं। तब मैंने पहचान लिया कि तंबू में जो संत थे, वे कोई और नहीं, प्रेम साईं थे। इस एहसास से मेरी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू भर गए। मेरे हिसाब से भगवान ने हमें याद दिलाने के लिए सपने बनाए कि यह जीवन भी एक सपना है। यदि आप कभी सपने के दौरान जाग गए हैं, यानी आप सपना देख रहे थे और फिर भी आपको अचानक पता चला कि आप सपना देख रहे थे, तो आपको पता लग जाएगा कि स्वतंत्रता का क्या मतलब है। अचानक जो कुछ भी घटित हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप अमीर, प्रसिद्ध और परोपकारी हों, या आप गरीब हों या बदमाश, अब कुछ भी मायने नहीं रखता, क्योंकि आप केवल सपना देख रहे हैं और वास्तविकता पूरी तरह से अलग है। आप सपने के दौरान इस पूरी बेतुकी बात पर हंसेंगे और फिर चाहे सपना जारी रहे या आप उठ जाएं, सपने में जो कुछ भी होता है वह पूरी तरह से महत्वहीन है। एक तरह से मुझे लगता है कि अच्छा होने और बुरा होने के बारे में हमारी बीच जो भी बातें होती हैं, वे बहुत ही तुच्छ हैं। वास्तव में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, यह सब कुछ बस है। इसी तरह हमें जीवन नामक इस सपने से जागना है, जिसे हमने अभी तक इतनी गंभीरता से लिया है। अगर हम थोड़ी सी भी बुद्धि लगाएं, तो हमें यह एहसास होगा कि जिस तरह सपने में हर चीज़ वास्तविकता की तरह वास्तविक दिखती है, उसी तरह हमारी तथाकथित वास्तविकता भी वास्तव में एक सपने से अलग नहीं है। बस जागने और पूरी तरह बेतुकता को समझने की ज़रूरत है, और फिर इस दुनिया में रहने का मतलब बिल्कुल अलग होगा। फिर कुछ भी आपके आनंद को छीन नहीं सकता। जिस प्रकार स्वप्न में मैं जो कुछ भी देखता हूँ, उसका निर्माता मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, उसी प्रकार मैं जो संसार देखता हूँ, वह भी मेरे द्वारा ही बनाया गया है और मैं ही सब कुछ हूँ और सब में हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं हूँ। क्या मेरे सपने मेरे अलावा कुछ और भी हैं? इस संसार में भी मेरे अलावा कोई नहीं है। जिस प्रकार स्वप्न मुझ में विद्यमान है, स्वप्न का विषय कुछ भी हो, उसी प्रकार यह संसार भी मुझ में विद्यमान है। इसलिए हमारे ऋषियों ने सदैव कहा है कि केवल आत्मा का अस्तित्व है और कुछ नहीं। इसीलिए अहम ब्रह्म स्वामी वाक्यांश है। रमन महर्षि ने मैं कौन हूँ पर ध्यान देने के लिए कहा है। निसर्ग दत्त महाराज ने मैं हूँ पर ध्यान देने के लिए कहा है। यद्यपि मृत्यु को अंतिम सत्य माना जाता है, वास्तव में मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जैसे हर सुबह कोई नींद से जाग जाता है, मौत भी एक जागने की घंटी की तरह है। यह एक और सपने का अंत है। सपने देखने और जागने के इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को सपने में से ही जागना होगा। क्रियायोग एक ऐसी सरल और वैज्ञानिक तकनीक है, जिसे नियमित अभ्यास से कोई भी अधिकतम 48 वर्षों के भीतर निश्चित रूप से सीखकर जागृत हो सकता है।